नाउ दीपिका लेक्चर नंबर 2 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहूनं स्वभाव विभाव परभाव को ज्ञाता सम्यक ज्ञान सुपुनी नमो चित्त धरिल्या। यह भाव दीपिका नाम का जो ग्रंथ है जिसके कर्ता है पंडित दीपचंद जी कांसलीवाल, उसमें 5 भावों का विस्तार से वर्णन है। हमने मंगलाचरण में देखा है कि जीव का स्वकीय भाव और प्रभाव ऐसे 2 भाव है। स्वकीय भाव में स्वभाव और विभाव ऐसे 2 भेद किए और प्रभाव यानी परद्रव्य उनके जो गुण है उसको प्रभाव कहा। तो उसको जैसा उसका स्वरूप है वैसा सम्यक ज्ञान उसको जानता है और सम्यक ज्ञान के धारक ऐसे पंच परमेष्ठियों को यहाँ नमस्कार करके ग्रंथ का प्रारंभ किया है। अब यहाँ 5 भावों का निरूपण नाम का यहाँ जो प्रकरण चलेगा, पहला अधिकार पृष्ठ संख्या है 4 ढुंढारी में। तहां जीव के सामान्य भाव तो 5 है। कल हमने उनके नाम देखे थे, बोलो नलिन भाई। यहाँ उन्होंने अलग उसका क्रम बताया, पारिणामिक, औदयिक, क्षौक्षमिक, औक्षमिक और क्षायिक। अब यहाँ पढ़ते हैं, जो कर्म की कोई भी अपेक्षा करी नाही, यानी जहाँ कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा स्वकीय अन्वयी परम भाव। देखो इसके क्या क्या विशेषण बताए। एक तो है स्वकीय है, दूसरा उसका विशेषण बनाया है अन्वयी, उसके अर्थ देखेंगे हम। यहाँ इसको कहते हैं परम भाव। चौथा लिखते हैं अनादि अनंत, जो जीव का निज स्वरूप। सो पारिणामिक भाव कहिए। पारिणामिक भाव उनके क्या क्या विशेष बताएं? एक तो स्वकीय है, जीव का अपना भाव है। अन्वयी का अर्थ क्या है? वही का वही, वही का वही जो कायम रहता है उसको अन्वयी कहते हैं। एक रूप सामान्य जो सदृश भाव, ये अन्वयी है। परम भाव है, उत्कृष्ट, उसके लिए परम कहा। अनादि अनंत है, नया उत्पन्न नहीं हुआ है। और जो जीव का निज स्वरूप है, पहले ही बताया था कि कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं है, यानी इसमें कर्म का उदय हो, उत्सम हो, क्षय हो, क्षयक्षम हो, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं लगती है। क्यों अपेक्षा क्यों नहीं लगती है?
स्वभाव भाव है।
तो क्षायिक भाव भी स्वभाव भाव है। देखो अन्य 4 भाव है वो पर्याय भाव है, और पर्याय में निमित्त का कथन होता है। क्षायिक भाव भले शुद्ध भाव है परंतु वो कर्म थे और उनका क्षय हो गया है इस अपेक्षा से, परंतु वो है कैसे? पर्याय रूप भाव। और ये कैसा है? स्वभाव भाव। अब ये तो पारिणामिक भाव का वर्णन हो गया। बहुरी कर्म का उदय ही है कारण जाको। ताकरी निब्जे जो जीव के भाव, यानी कर्म के उदय के निमित्त से जीव में उत्पन्न हुए जो भाव है सो उदयिक भाव कहिए। ये इनके कौन कौन से भेद है उसकी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ डेफिनेशन पहले बता रहे। अब सार्वक्षमिक भाव को यहाँ बता रहे हैं। बहुरी जीव के गुणन के घातक, यानी गुणों के घातक प्रतिपक्षी कर्म के क्षयोपशम होते, जो आत्मा विषय आत्मा विषय ने आत्मा में एक देश गुण की प्रकटता होए शोक शाप शमी भाव के क्या कहना चाहते हैं? जिस गुण संबंधी क्षोभ शमी भाव चलेगा, जैसे ज्ञान का क्षोभ शमी भाव है, वैसे सम्यक तो भी क्षोभ शम सम्यक तो है, तो जिस किसी भाव की चर्चा चल रही है तो उस गुण के जो घातक कर्म है, जो घाती कर्मों में, इस घातक कर्मों में प्रतिपक्षी कर्म में एक क्षोभशम भाव लगता है, उसका अर्थ क्या है? अघाती कर्मों में ये क्षोभशम भाव घटित नहीं होगा, घाती कर्मों में घटित होगा। दूसरी बात क्या है? ये अपने अपने जो प्रतिपक्ष घातक कर्म है, जैसे मति ज्ञान के लिए मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान के लिए श्रुत ज्ञानावरण, वो क्या है? प्रतिपक्षी कर्म। तो उसमें उसका क्षोभशम होने पर, तो जो क्षोभशम कौन से प्रकृतियों का होता है? क्योंकि केवल ज्ञानावरण का भी, यानी केवल ज्ञान का भी केवल ज्ञानावरण प्रतिपक्षी है, तो उसका क्षोभशम होने पर क्या होता है अरविंद भाई?
केवल ज्ञान प्रकट नहीं
होता। केवल ज्ञानावरण का क्षोभशम होने पर क्या होता है?
केवल ज्ञान का क्षोभशम नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान क्षोभशम ज्ञान
नहीं। तो केवल ज्ञानावरण का क्षोभशम नहीं होता, ऐसा कहना? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता?
क्योंकि उनके सभी पक्षों का जब इस आवरण हट जाता है।
हाँ हाँ बोलो। हाँ बोल।
हाँ
बोलो।
सर्वघाती
बहुत अच्छा। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है और उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती है। अब ये सर्वघाती देशघाती क्या होता है? अनुभव को बताने वाले जो है उसको स्पर्धक कहेंगे आप। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती है, यानी उसमें थोड़ा घात करे थोड़ा प्रकट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो पूरा घात करे या तो वो नष्ट हो जाए, तो पूरा गुण प्रकट हो जाए, उसमें दो ही अवस्था होगी। यानी केवल ज्ञानावरण का उदय है या क्षय है, उसमें बीच वाली क्षोभशम वाली अवस्था नहीं होती। तो क्षोभशम वाली अवस्था किसमें हो सकती है? देशघाती प्रकृतियों में। अघाती में कौन सी देशघाती है? हमने पहले यह नक्की किया कि घाती कर्मों में ही देश ये देशघाती होते हैं और उसी में क्षोभशम होगा। तो देशघाती प्रकृति है, परंतु उसके स्पर्धक कैसे है? दोनों टाइप के, सर्वघाती और देशघाती। तो सर्वघाती स्पर्धक तो बनते समय तो बनते हैं, परंतु उदय में आते हैं तो देशघाती होकर उदय में आते हैं, और सर्वघाती सत्ता में पड़े रहते हैं। तो सत्ता में पड़े रहना, उदय में नहीं आना, उसको कहां वो उपशम हो रहा है उसका। और उदय किस रूप से चलेगा? देशघाती रूप से करेगा। ये बात हम यहां पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो जिस गुण की बात हो रही है उसके प्रतिपक्ष कर्म का जहां क्षोभशम होता है, तब उस जीव का गुण कुछ प्रकट होता, कुछ का, पूरा नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? उसका क्षोभशम चल रहा। अभी इसको फिर पढ़ेंगे। बहुरी जीव के गुणन के घातक प्रतिपक्षी कर्म के क्षोभशम होते, यानी क्षोभशम होने पर जो आत्मा विषय यानी आत्मा में एक देश गुण की प्रकटता होए, पर्याय में उसका एक देश यानी आंशिक प्रकटता होती है, शोक क्षोभशमी भाव कहिए। अब यहाँ जो क्षोभशम क्या है या क्षोभशमी भाव क्या है, तो उसमें क्या क्या होता है? तो कहते हैं जहां गुण के प्रतिपक्षी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकन के उदय का तो अभाव है। सत्ता में जब बंधे थे तो सर्वघाती देशघाती दोनों बंधे थे, परंतु कहते उदय वाला जो निषेक है वहां सर्वघाती रूप से उदय नहीं होगा। परमाणुओं का तो उदय हो रहा है, परंतु उसमें जो सर्वघाती रूप अनुभाग था उस रूप से उसका उदय नहीं होगा। तो उसके सर्वघाती रूप से उदय का अभाव, और ऊपरी ऊपरी यानी भविष्य काल में सत्ता में तिष्ठता प्रतिपक्षी कर्म का उपशांतकरण होए। उपशांतकरण यानी जिसको हम कैसा उपशम है? वो सदअवस्था रूप उपशम, उसी को अप्रशस्त उपशम भी कहते हैं। यानी सत्ता में पड़ा है, उदय में नहीं आ रहा, आगे कहते जाके उदीर न हो, उदय में आवे नहीं। हम तो हमेशा सीखते आए हैं, जिसका उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है। जैसे मति ज्ञान आवरण देशघाती प्रकृति है, उसका उदय चल रहा है तो उसकी उदीर्णा भी तो होगी, परंतु यहां हमें एक सूक्ष्म घटित करना है। तो देशघाती का उदय हो रहा है, सर्वघाती एक निषेक के ऊपर भविष्य में सर्वत्र पड़े हैं, जब उदय में आएंगे तो देशघाती होकर उदय में आएंगे। तो यहाँ एक बात लिखिए, उदीर्णा होती है पर उदय नहीं होता। इसका अर्थ क्या है, उदयावली में तो आप पहुंचते हैं, उदयावली में तो दिए जाते हैं, तो जो उदय रूप निषेक में जो आएंगे तो देशघाती रूप टर्न होकर उदय में आएंगे। इसलिए कहा उदीर्णा होती है परंतु उदय नहीं होता। तो हमें ऐसा उल्टा पुल्टा लगता है ना, जिसका उदय है उसी की उदीर्णा होती है, परंतु यहाँ वैसा नहीं कह रहे, इनकी उदीर्णा तो हो रही है परंतु उदय नहीं होगा। किसके? सर्वघाती के। और गुण के प्रतिपक्षी कर्म का देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, क्योंकि एक जो प्रकृति हम मति ज्ञानावरण प्रकटित करते हैं, मति ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है जो पूरा घात कर दे, और देशघाती स्पर्धक भी है, पूरा घात नहीं करते, गुण थोड़ा प्रकट रहता। मान लेते किसी के सर्वघाती का उदय हो जावे तो क्या हो जाएगा? हाँ, मति ज्ञानावरण का जड़ हो जाएगा, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। सर्वघाती का बंध भी है, सर्वघाती की सत्ता भी है, परंतु उदय कभी नहीं होगा। यानी जीवों का संसार अवस्था में मति श्रुत ज्ञान तो प्रकट रहेगा ही रहेगा, पहले गुणस्थान से बारहवें तक, और सूक्ष्म निगोद से लेकर वो सभी संगी पंचेंद्रिय तक मति श्रुत ज्ञान तो उनका चलेगा। उसका अर्थ क्या है? उसका क्षोभ हो रहा है, मिथ्या दृष्टि है तो भी और सम्य दृष्टि है तो भी ज्ञानावरण का हम कहेंगे क्षोभ चल रहा है। इसलिए हम क्या कहते, बारहवें तक क्षोभम ज्ञान है ना, और तेरहवें गुणस्थान वाले के क्षायिक ज्ञान, वहां तो सभी ज्ञानावरण का क्षय हो जाता है। तो ऐसा होने पर जो गुण प्रकट होता है, सो क्षोभमिक भाव कहिए, ये क्षोभमिक भाव समझ में, वैसे हमने गुणस्थान में भी सीखा था, पंचलब्धि के प्रकरण में भी उसको विस्तार से देखा था। कौन नहीं थे गुण प्रकट हो रहे, अभी ज्ञान गुण है वो प्रकट होता है ना, उसकी पर्याय प्रकट होती है जानने रूप, गुण प्रकट होना ही नहीं उसकी पर्याय चल। अब औपशमिक भाव की बात करेंगे, तीन हो गए ना हमने, पारिणामिक हो गया, औदयिक हो गया और क्षौपशमिक हो गया। यानी इससे ये बात देशघाती सर्वघाती का जो किसी का उदय है नहीं उदय है ये जो बात है वो किस पर घटित होगी? देशघाती प्रकृतियों पर घटित होगी। एक तो क्षयोपशमी भाव घाती कर्मों में होता है, घाती कर्मों के क्षयोपशम होते हैं। दूसरी बात, सर्वघाती प्रकृतियों में ये बात नहीं होगी। तो सर्वघाती प्रकृतियों गिनाएंगे जिसमें क्षयोपशम नहीं होता है? हाँ, घाती कर्मों के सर्वघाती प्रकृति आपको बताने, केवल ज्ञानावरण,
वैष्णवी में चक्षु केवल दर्शन,
केवल दर्शनावरण,
केवल दर्शनावरण और अन्य चार, निद्रा पांच है, पांच निद्रा।
इसका अर्थ क्या है? वो निद्रा का उदय होगा या जागृत अवस्था, तो अनुदय रहेगा, अनुदय होगा, यानी उसका निद्रा का भी क्षोभम नहीं होगा, निद्रा कर्मों का क्षोभम नहीं होगा। किसी निद्रा का उदय हो सकता है या उदय है ही नहीं, ऐसा कहेंगे हम जागृत अवस्था में। आगे तो हमने ज्ञानावरण में केवल ज्ञानावरण देखा, दर्शनावरण में पांच निद्रा और केवल दर्शनावरण देखा। हाँ, आगे मोहनीय में एक में पहला मिथ्यात्व ले लो ना, मिथ्यात्व, वैसे समय मिथ्यात्व भी सर्वघाती है परंतु उसका अभी बंध नहीं होता है, परंतु सत्ता में है, और वहां पर भी सूक्ष्म भाव का है, परंतु वो थोड़ा डिटेल है, उसको बात छोड़ देंगे। फिर चारित्र मोनी में बारह कषाय, वो प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान ये सर्वगति अंतराय सभी के पक्का नहीं है, उनको सोचने तो नहीं। पांचों ही देश का, पांचों ही देश का। आओ नीता बेटा, ये आसान है विषय, समझ में आवे ऐसा है। देखो आगे बढ़ो, तो चार नंबर का पेज निकाला क्या? हाँ नीता सुनो, अभी अभी बात क्या था, मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। जीव के पांच अलग अलग भावों का यहाँ वर्णन चल रहा। भाव कहने से जो जीवन के गुण है, वो जो पर्याय में पर्याय उसकी होती है, उसको भी भाव कहते हैं। कहीं कहीं स्वभाव को भी भाव कहते हैं। तो यहाँ स्वभाव भाव का भी वर्णन है। जो जीव में अनादि से अनंत काल तक रहता है, वो उसका स्वभाव है। जैसे अग्नि का उष्णता स्वभाव है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, दूसरे किसी के कारण उसमें वो उष्णता नहीं है, वो उसके अपने कारण से है और है। ऐसे जीव में जो उसका स्वभाव भाव है, कौन सा स्वभाव भाव है? जानना 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 आदि जो उसकी बातें होती है, वो अनादि से अनंत काल तक रहे। तो इस स्वभाव भाव को क्या नाम दिया ये पांच भावों में? तो पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव को हमने क्या उसका वर्णन देखा, देखो फिर से ऊपर, कि किसी कर्म के कारण वो नहीं होता, यानी कर्म के उदय में वो उत्पन्न हो जावे या बाद में मिट जावे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जीव का अनादि अनंत कायम रहने वाला स्वभाव भाव। देखो जीव कहने से ये मनुष्य ये जीव मत सोचना, ये शरीर तो जुदा है, कर्म जुदा है और यहाँ रहने वाला जीव जुदा है। हम जब जीव की बात करते हैं तो इन सब से निरपेक्ष जीव में क्या क्या हो रहा है, उसमें क्या बातें होती है, उसकी चर्चा यहाँ चलेगी। क्योंकि हम जीव है तो हमें अपना स्वरूप निश्चित करना है। अब यहाँ कुछ पहले छोड़ो, इसका ये करो वो करे, कोई बात नहीं है। तो हमें ये जानना है, मुख्यतः स्वरूप निश्चित करना है। तो इसके लिए ये पांच भावों की चर्चा चली है। तो हमारा जो स्वभाव है, जो किसी के कारण नहीं है, जो किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, जो अनादि से ने कोई बिगिनिंग ही नहीं है और अनंत ने कहीं एंड ही नहीं है, ऐसा हम है ऐसा रहने वाला मैं स्वयं हूँ और मेरा स्वभाव भी कायम रहने वाला है, तो उसको कहेंगे पारिणामिक भाव। तो अपना है, वही का वही है, कायम रहता है, सर्वोत्कृष्ट है और जीव का अपना निज स्वरूप है, इसको पारिणामिक भाव कहा। कर्म के उदय में यहाँ जीव के जो कोई भाव होते हैं, वहाँ औदयिक भाव है। जैसे हमने देखा ना, पानी का कायमी स्वभाव क्या है, हम पूछेंगे किसी को, शीतल है। परंतु अग्नि के संयोग में पानी स्वयं गर्म होता है, पानी में ही उत्पन्न हो रहा है, परंतु उसका भी भाव होता है। अब यहाँ जीव में जीव का पारिणामिक स्वभाव है, परंतु अभी कर्म भी और जीव भी अनादि से एक दूसरे से बंधे हुए पाए जाते, किसी ने मिला ही नहीं है, परंतु अभी संसार अवस्था में वो एक साथ रहते हैं। जीव के मोह राग द्वेष के कारण नए नए कर्म बनते हैं और पुराने जिनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, स्थिति पूरी हुई, वो निकल कर चले जाते हैं। और उसका फल कब मिलता है? जब जाते हैं उस एक समय में उसका फल मिलता है और फिर वो कर्म से अकर्म होकर परमाणु अन्य उसकी पर्याय बदल जाती है। तो उसका ये जो उदय होता है, उस समय जीव में जो उसके निमित्त से जो भाव होते हैं, जैसे हमारे मोह राग और द्वेष के परिणाम, वहाँ पुराने कर्मों का उदय चलता है और ये भाव होते हैं, तो इन भावों को उदय शब्द से औदयिक शब्द तैयार हुआ। जैसे शरीर से शारीरिक, मन से मानसिक ये शब्द तैयार हुए ना, वैसे उदय से कौन सा शब्द तैयार हुआ? औदयिक। तो जीव के इन भावों को औदयिक भाव कहेंगे। तीसरा हमने प्रकार देखा क्षायोपशमी
भाव जो है वो आठों कर्मों में लागू पड़ते हैं।
नहीं आठों वो बात आएगी अभी, कौन कौन से कर्मों में होते हैं, विशेषता कौन से कर्म में है, कहाँ तक होते हैं, कौन से गुणस्थान में कौन से होते हैं, वो सब बातें आएगी। अभी तो बिल्कुल बेसिक बात से हम शुरू करें, यह तो जस्ट आज बिगिनिंग है पूरी। एक होता है क्षायोपशमिक भाव, यानी जैसे हमारा जानना ये गुण है और उसमें सामर्थ्य कितनी है, पावर कितनी है, तो केवल ज्ञान किसमें कब अभी वर्तमान में, परंतु अभी हम कितना जान रहे, बहुत थोड़ा जान रहे, यानी ये जो प्रकट अवस्था है बहुत अल्प ऐसी हो रही है, यानी कुछ गुण प्रकट है कुछ अप्रकट है। ज्ञान की जितनी पावर है वो पूरी पर्याय में अभी प्रकट नहीं है हमारी, तो थोड़ा सा अंश प्रकट है और कुछ अप्रकट है। तो यहाँ ऐसी जब बात बनती है तो उसको कहेंगे क्षोभ, गुणों का थोड़ा अंश प्रकट है, प्रकट है ना, पर्याय में उत्पन्न हुआ है, परंतु पूरी कैपेसिटी यहाँ मौजूद है। देखो धर्म करना यानी क्या करना, तो अपनी जितनी पूरी सामर्थ्य है जिसको हम पारिणामिक भाव कहेंगे उसको पहचानना, उसका ज्ञान करना। वहाँ कोई क्रिया नहीं कि आप ऐसा करो, ये उपदेश उपवास करो, ऐसी पूजा करो, बैठ कर करो, खड़े होकर पूरा चार बार नमस्कार करो, ऐसी कोई बात नहीं। पहले में पहले इन अपने भावों को पहचानना है और उसके लिए भी कोई कुछ अटपटी मेहनत नहीं करनी है, बस जानते रहना है उसको। अब ये जो क्षोभ भाव है कुछ गुणों के पर्याय जो है, स्वभाव पूरा है थोड़ा प्रकट है, उसको कहेंगे क्षोभशमी भाव। हम इसके बहुत शॉर्ट में उसकी परिभाषा देखें। अब उसके नीचे आए हम, अब चौथा है औपशमिक भाव। जैसे उदय शब्द से औदयिक शब्द तैयार हुआ, वैसे उपशम से औपशमिक तैयार होता है। उपशम होने ने दबे रहना, उदय में नहीं आना। कर्मों का उदय होता है तो उसका निमित्त बनता है जीव के साथ। अब ऐसा हम सोच सकते कि पहले तो उसका उदय होता 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 है, कुछ ऐसी बातें बनी कि उसका उदय कुछ काल के लिए रुक गया, तो उसके उदय में जो औदयिक भाव होता था वो भी कुछ काल के लिए नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, औपशमिक। जैसे अनादि से मिथ्यात्व कर्म का भी उदय हो रहा था और हमारा यहाँ मिथ्यात्व भाव भी हो रहा था, जब जीव ने तत्व विचार किया शुरू किया उस काल में अपने आप ही वो मिथ्यात्व का जब उदय होता था वो रुक गया कुछ काल के लिए, और यहाँ जीव के जो मिथ्यात्व होता था वो भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सम्यक्त्व हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, औपशमिक सम्यक्त्व। ये इतना सरल और सहज होता है, तो ये हम पढ़ेंगे तो उसकी सरलता सहजता ख्याल में आती है, नहीं तो हमें ऐसा लगता है खाली बातें करने से क्या होगा, कुछ करेंगे तो मिलेगा ना फल। यानी अभिप्राय में कुछ न कुछ मैं करूं, क्या करूं, शरीर की क्रिया, शरीर पुद्गल है, मन पुद्गल है, वचन पुद्गल है, और पुद्गल की क्रिया करके हमने धर्म किया ऐसा मानते हैं, ये हमारी मोटी भूल है। और ये परद्रव्यों का कार्य मैं कर सकता हूं, ये मिथ्या मान्यता पर। घर में कोई बड़े आपके यहाँ अभिता बच्चा आ जाए तो आप नौकर को बताते हैं ना, क्या नाम है उसका, दत्ताराम, जा रहे उसको जाके बिठाओ, नमस्कार करो उसको, ऐसे कहते हैं। तो हम भी भगवान के सामने गए, शरीर को बोलते हैं जा झुक जाओ वहां पर, और फिर मन में विकल्प करते हैं और वचन को बोलते चलो पूजा बोलो, और ये करके हमने भगवान का बहुमान किया। परंतु हम तो ज्ञायक स्वरूपी है, भगवान ने जैसे गुण उनके प्रकट हुए हैं वैसा हम ज्ञान में निश्चित करेंगे, और मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है, ऐसा जब हम निश्चित करेंगे तब हमने भगवान की विनय की, नहीं तो तब तक ये खाली बोलने से और झुककर घुटने टेकने से कुछ नहीं होने वाला। उसका निषेध नहीं है, उल्टा अर्थ नहीं निकालना है। हाँ लोग ऐसा सोचते है ना, तो चलो अच्छा है, इतने दिन तो नमस्कार, इतने दिन प्रभावित तो अब तो ये औपशमिक शब्द कैसे तैयार हुआ, उपशम से, अभी हम उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। मैं यहाँ ढूंढारी भाषा में पढ़ रही हूँ परंतु उसका हिंदी अर्थ बताते बताते जाएंगे। तो जीव के गुण के घातक प्रतिपक्षी कर्म, जो जो अपने कर्म है, अंदर जाके पियो, यहाँ शास्त्र के अभिनय नहीं करना। हाँ जो औपशमिक भाव की बात है, ते जीव के गुणों के घातक, देखो गुणों का कोई घात नहीं कर रहा, तो पर्याय में जो उसका भाव प्रकट हो रहा है उसका घात है ना, तो उसके प्रतिपक्षी कर्म के उदय का अभाव होते हैं। उदय का अभाव हुआ है, सत्ता में से नष्ट नहीं हुए हैं। सत्ता में से नष्ट हो जाए तो हम कहेंगे उसका क्षय हो गया, तो फिर उस भाव को हम क्षायिक भाव कहेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं? औपशमिक। उदय कुछ काल के लिए रुक गया है। तो गुण के घातक प्रतिपक्षी कर्म के उदय का अभाव होते। अभी उदय का अभाव कैसे करना? अब बोलो भाई, उदय का अभाव करने के लिए क्या ट्रिक है आपके पास? देखो, हम पहले में पहले ये नक्की करना, हम कर्म में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो अपने जब हम अपने स्वभाव का विचार करते हैं तो अपने आप कर्मों में उपशम हो जाता है। यानी ना हमें कर्म की क्षय करने की कोशिश करना है, ना उपशम करने की। कर्म तो परद्रव्य है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते उसकी अवस्था में। ये पहले नक्की करना है अपने बुद्धि में। हम तो कुछ ना, ये राग द्वेष तो कम करो, ये तो करो, वो तो करो, कर्म को हटाओ, ये बात ऐसे ही उपदेश एक दूसरे से सुनते हैं और हमारी वैसी भ्रांति चलती है। इतना अभ्यास करते हो और राग क्रोध करते हो, इसको पहले कम करो, ऐसा एक दूसरे को उपदेश भी दिया जाता है। परंतु उसका मेथड क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, ख्याल में जब तक नहीं आता है तो ये केवल एक दूसरे को देखा देखी उपदेश सुनना और देना, ये बात कुछ तत्व ज्ञान के अनुसार नहीं है, महावीर भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं है। हम सच्चा उपदेश क्या है उसको देखेंगे। कल ही हमने पढ़ा था, दीपचंद जी कासलीवाल ने स्वयं लिखा है, देखो ये हमने प्रास्ताविक में लिखा था, देखा था 6 नंबर का प्रस्तावना में, 6 नंबर का नीचे से 4th लाइन थी। दीपचंद जी कहते हैं जीन सूत्र, जीने सूत्र यानी जिनेन्द्र भगवान का जो उपदेश हमें प्राप्त है, गंधर्व भगवान ने जो रचना की है, जीन सूत्र के अर्थ अन्यथा करने लगे। आगे भी 236 पर है क्या? हाँ, ताकरी यानी उससे भोले जीव तिनकी बताई प्रवृत्ति, यानी कोई अभी महाराज है या कोई बड़े लोग है और उपदेश करते हैं ऐसा करो वैसा करो, कोई प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति ने आचरण क्रिया उसका उपदेश देते हैं, तो कहते हैं भोले लोग उसी में लगे रहते हैं, ऐसा ही करने लगते हैं। ना ही है सत्य सूत्र का ज्ञान जिनको, यानी मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ, जिनको, क्योंकि हमने कल एक एक शब्द पढ़ा है, जिनको शास्त्रों का अभ्यास नहीं है, जिनको सही उपदेश मालूम नहीं है, वो इसी को सही उपदेश समझकर उसी को अंगीकार करते रहते हैं, फिर भी उनको कोई फायदा नहीं होता। तो कहते कि जिन मतों का तो जैसे बहुत कहीं कहीं कुछ कुछ रह गया है, वैसे तो अभाव ही हो गया। आगे तो यहां तक उन्होंने लिखा है कि ऐसे कहने वाले भी बहुत कम रह गया है। इतनी बात क्या, सुनने वाले भी नहीं है। उस काल की बात है, पंडित टोडरमल जी के भी पहले की बात है, 350 वर्ष की संध, बताया था ना 1779 की बात है, विक्रम संवत। तो तभी तो ऐसे की थे, बताने वाले और सुनने वाले भी, ये सत्य मार्ग की बहुत लोप हुआ था। अभी काल के बाद कुछ टोडरमल जी हुए, बनारस दास जी हुए, अभी अभी कांजी स्वामी हुए, अन्य भी बहुत सारे अपने यहाँ पर भी हो गए है। तो उन्होंने ये सत्य मार्ग बताया, लिख के रखा है, वो भी बता चुके कि ये सुनने वाले कोई नहीं है मेरे पास अभी सामने, परंतु ये सत्य मार्ग का लोप नहीं हो इसलिए मैं ये लिख के जाता हूँ। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का लिख के तैयार किए थे, और उस जमाने में तो हस्तलिखित था, वो प्रिंटेड नहीं था कि हमने लिख दिया और कोई इसका प्रिंटिंग बना दो और अनेक पुस्तकें छापे। तो कितनी उनकी ऐसी करुणा थी कि ये सत्य मार्ग का कहीं लोप न हो जाए। और ये भी थे कि संस्कृत प्राकृत के विद्वान तो बहुत है और वो तो स्वयं उसमें से पढ़ सकते हैं, परंतु जनसाधारण अपनी बोली भाषा में बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान उनको नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने उस समय जमाने की ढूंढारी भाषा में ये लिख के रखा, बोली भाषा में, क्योंकि सामान्य जिसको कुछ अभ्यास नहीं है ऐसे जो भी इसको जानकर अपना कल्याण करे, यही उनकी भावना थी। अब यहाँ आते हैं अपने पेज पर, 4th पेज पर हम पढ़ रहे थे, औपशमिक भाव को हमने देखा था। अब ये 5वें नंबर का भाव, बहुरी जीव के गुणन के घातक प्रतिपक्षी कर्म के क्षय होते। अभी फॉर एग्जाम्पल जीव का गुण है ज्ञान गुण और उसकी पूरी सामर्थ्य है केवल ज्ञान, और उसका प्रतिपक्षी कौन है, उसका केवल ज्ञानावरण कर्म, तो उसका पूर्ण अभाव हुआ और अन्य भी पांचों ही ज्ञानावरण का पूर्ण क्षय हो गया, जीव की सत्ता में से नष्ट हो गए। कब होता है? जब केवल ज्ञानी हो, 13वें गुण स्थान में। तब जीव में कौन सा गुण प्रकट हुआ? तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? क्षायिक भाव, कर्म का क्षय हो गया और जीव में वो भाव प्रकट हुआ। ये तो कर्म ने कुछ नहीं किया जीव में, नाम कर्म की ओर से देते हैं, ये भावों के नाम पढ़कर हमें ऐसा दे। अभी क्या करें, कर्म का उपशम हो जाए तो हमको उपशम भाव प्रकट हो जाए, कर्म का क्षय हो जाए तो हमें वो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसी पराधीनता नहीं है। कोई भी द्रव्य पराधीन नहीं है, ना पुद्गल पराधीन है ना जीव पराधीन है। जीव में अपनी पर्याय अपनी योग्यता से स्वयं में होती है और कर्म में उसकी योग्यता से उसकी अवस्था होती है, दो भिन्न द्रव्य है, कोई किसी का कर्ता नहीं है और कोई नहीं, तो जीव जड़ कर्म के अधीन हो जाएगा ना। अरे फिर कल भगवान की पूजा छोड़कर कर्म की करनी पड़ेगी क्यों? अरे कर्म जरा हट जाओ तो रास्ता मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जीवों की मिथ्या बुद्धि है कि क्या करे, कर्म का उदय है, क्या करे, हम इतना शोक क्यों हो रहा है, इतने ऐसे प्रतिकूलता क्यों है, क्या करे, कर्म का ऐसा जोर है। ये कुछ नहीं, कर्म हमें कुछ नहीं कर रहा, ख्याल में। ये मुख्य में पहला पॉइंट लेना है, ध्यान में रखना। अब आगे पढ़ेंगे तो ये पंच भाव सामान्य जानना, सामान्य ने अभी ये तो मूल भाव बताया है, उसके फिर भेद वगैरह बताएंगे आगे चलकर। अब इन पांच भावन के विशेष 53 भाव कहिए, विशेष यानी उसके अभी डिविजन्स, पहले हमने मूल देखे हैं, उसके भेद और प्रभेद। पांच के मूल नाम बताएंगे वीरेश भाई, आप बताना। अभी जो हम यहाँ देखे हमने पांच भाव, कहाँ से शुरू किया था? स्वभाव भाव से शुरू किया था, पारिणामिक औदयिक, हाँ बहुत अच्छा, आप रिपीट करेंगे सुशीला बेन? शायद ये पांच भाव, उसमें से पारिणामिक भाव है, उसमें कोई कर्मों की अपेक्षा नहीं है। बाकी जो औदयिक है उसमें कर्म का उदय है, जहाँ क्षौषमिक भाव है वहाँ कर्मों में क्षौषम चल रहा है, जहाँ औषमिक है वहाँ कर्मों में उपशम चल रहा है, और जहाँ क्षायिक भाव है वहाँ कर्मों का वहाँ क्षय हो चुका है। परंतु कर्म के कारण नाम भले दिए है, परंतु कर्म ने इनको उत्पन्न नहीं किया है, जीव के अपने स्वयं की योग्यता से ही उत्पन्न होते रहते हैं। अब आगे चलेंगे हम, ये 53 भाव ने हरेक के जो डिविजन्स है सब डिविजन्स उसको देखेंगे। तहा यानी वहां पारिणामिक भाव के तीन भेद, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। अभी आगे तो इनके विस्तार से, बहुत विस्तार से वर्णन आने वाला है, हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं। जीव का जो जीवपना है, जीव किसको कहते हैं? जो अनादि से जीता आया है, वर्तमान में जी रहा है और अनंत काल तक जीता रहेगा, उसको हम जीव कहेंगे। और उसका जीवपना, उसका स्वभाव भाव है, उसको कभी छोड़कर जाता नहीं है। तो जीव जो कभी मरता ही नहीं उसको जीव कहते हैं। कौन मरता है? शरीर मरता है। वो जिंदा कब था? शरीर जिंदा कब था? जीव कहीं से मरकर यहाँ आया है, नए शरीर के साथ संयोग हुआ है, वहां उसका जो कुछ उसके आयु बांध कर आया भी, वो भी निमित्त पने से उतना कर्म यानी शरीर का संयोग है। ये शरीर को छोड़ा, नेक्स्ट समय में अन्य भव उसका चालू हो गया, फिर वहां जाके नया शरीर धारण करता है। फिर भी जब तक इस शरीर में इतना मोह है कि यही मैं हूं मानकर उसके लिए सब कुछ, उसकी जिंदगी भर की जो उसके आचरण है उसी के, ये चमड़े को धोने में, तो हम कहते हम चमड़े का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु इस चमड़े के पीछे पूरे सुबह से लेकर रात तक इसकी सेवा चाकरी करते हैं। उसको नहलाना है, उसको साफ सफाई करना है, पाउडर डालना है, हाँ क्या क्या लगाना है, उसको सुगंधित करना है, और दूसरे दिन चमड़ा वैसा का वैसा गंदा, फिर उसको वही चल करता है। तो ये जीवत्व है वो जीव का अपना भाव है, हम स्वयं जीव है, अभी शरीर के संयोग में है, तो हम उपचार से इसको भी जीव कह के पुकारते, ये एक इंद्रिय, ये द्विंद्रिय, ये मनुष्य जीव है, ये तिरियंच जीव है, कहेंगे उसको, पर कहने मात्र से हम उस रूप ही हो गए, मानना ये भूल है। देखो यहाँ एक बात होती है कहना, एक बात होती है मानना, एक बात होती है जानना। कथन होगा कि ये मनुष्य जीव है, ऐसा कहेंगे, परंतु उसमें मानना क्या है, ये जो दिख रहा है वो शरीर है, जीव इससे भिन्न है, हम उसको शास्त्र से जानेंगे पहले और फिर वैसा सोचकर मानेंगे सही, और सही मानेंगे और शास्त्र से जाना है, अब उसको हम स्थिर होकर अपने में विचार करके अपना अनुभव करेंगे, ये प्रोसेस है और इतना सरल है। अपना सब कुछ कर सकते हैं वो करने के जीव को इंटरेस्ट जरा ही नहीं, पर हमें कुछ नहीं कर सकते फिर भी माथा मार मार के बाय चांस कुछ बातें होती तो हमने कितना किया ऐसा अभिमान हो जाता है और आकुलता बनी रहती तो बनी रहती। तो यहाँ एक तो जीवत्व भाव है, दूसरा है भव्यत्व भाव। देखो ये अनादि से ही जीव में ऐसे जो कुछ भाव पड़े, किसी ने उत्पन्न नहीं किए। भव्यत्व, भव्य उसका अर्थ क्या, होने योग्य, अभव्य नहीं होने योग्य, क्या होने और नहीं होने, तो कहते सिद्ध होने योग्य, तो सिद्ध भले नहीं होने, सम्य दर्शन तो होगा कि नहीं, नहीं, जो अभव्य जीव है उसकी ऐसी योग्यता ही नहीं उसके अंदर कि वो सम्यक तो भी प्राप्त करे, क्योंकि एक बार किसी कभी नहीं करेगा, एक बार जिसको सम्यक तो होता है भले वो मिथ्यात्व में भी चला जाए तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष जाता ही जाता है नियम से। अभव्यों में कौन सा ऐसा कर्म है उसका कि जिसके कारण वो सम्यक दर्शन, किसी कर्म के कारण नहीं है, लिखा क्या है पारिणामिक भाव, ऐसी ही उस जीव की योग्यता है, भले वो शास्त्र भी सुनेगा कुछ करेगा फिर भी उसको वो कर्ण लब्धि होकर कभी सम्यक तो नहीं होगा, कि प्रायोग लब्धि तक के उसके चार लब्धि हो सकती है, प्रंच लब्धि पड़ी होगी तो आपको ख्याल में आएगा, यानी उसने उपदेश भी सुना है थोड़ा तत्व का विचार भी करेगा परंतु वो आत्म सन्मुख होकर आत्मा का अनुभव नहीं करेगा, क्यों, उसके पर्याय में ऐसी योग्यता ही नहीं है। हाँ घूमेगा ना, अच्छा मजा करेगा, कभी देव होगा, हाँ ग्रहवेग तक जाएगा, कभी मनुष्य होगा, कभी राजा होगा, कभी नारकी होगा, कभी निगोद में चला जाएगा, लंबे काल तक वहाँ घूमेगा, तो घूमने में हमें कितना अच्छा लगता है, आज इधर जाओ कल स्विट्जरलैंड जाओ, कभी कश्मीर जाओ, कभी यूरोप जाओ, कभी जापान जाओ, कितना अच्छा लगता है ना। लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ हमने अनंतों बार जन्म मरण नहीं किया, वो भी क्रम से पता ही नहीं ना हम कहाँ कहाँ, क्योंकि हम अनादि है कि नहीं है, अनादि का अर्थ क्या है, जिसको कोई बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंग नहीं है तो हमने आज तक इतना 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 काल हमने बताया है, बिताया है, वो कहाँ बिताया है, तो इन सभी पर्याय में हम गुम गुम कर आए। हाँ आदत लगी ना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है घूमने। देखो ये भव्यत्व जो है, कोई जीव ऐसे भी भव्य है परंतु जब तक सम्यक तो नहीं प्रकट किया है तो वो भी घूम रहे हैं ऐसे ही, पर उनमें योग्यता भी है और यथा समय उनकी जब जिस समय योग्यता है उस समय वो सम्यक दर्शन भी प्रकट करेंगे, मोक्ष भी चले जाएंगे, हो सकता है और इससे भी अनंत काल के बाद हो जाएंगे, यानी कभी भव्यों से रहित हो जाए ये संसार ऐसा भी नहीं होगा, हमेशा ही भव्य जीव नए नए वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, मुनि हो गए, अरिहंत हो गए, मोक्ष चले जाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा। हमें ऐसा लगता है ना कि सभी जीव जाएंगे मोक्ष तो यहाँ कौन रहेगा, ये संसार की देखभाल कौन करेगा। अरे 600-800 तो जाते हैं 6 महीने 8 समय में, और आप यहाँ की क्यों चिंता कर रहे हैं, नरक में असंख्यात समय दृष्टि है, देवों में असंख्यात समय दृष्टि है, तिरियंच असंख्यात समय दृष्टि, और अभी यहाँ की मनुष्य संख्या मत देखो, विदेह क्षेत्र में है कि नहीं वहाँ, और वहाँ तो मोक्ष जाने का मुनि भी कितने हैं, तो हमें तो चिंता आजू बाजू कौन क्या करता है कोई नहीं दिखता है, तो जहाँ सभी गर्दी घूमती है तो हम भी जाते उसके पीछे पीछे, परंतु अपना कल्याण किसमें है इतनी सोचने की बुद्धि हमारे पास है कि नहीं है? क्योंकि लौकिक तो पढ़ाई हमने बहुत की, उसमें तो बहुत बहुत बाकी दुनियादारी में तो बहुत हम होशियार है, परंतु जिसमें अपना सचमुच कल्याण है, क्योंकि हम अनादि से है तो आज तक रखड़े क्यों? अभी हम मनुष्य हुए हैं तो अनादि से क्या मनुष्य ही थे क्या? अरे एकेंद्रीय पर्याय में अनंत काल बिताया है, कभी बाय चांस द्विंद्रीय आदि पर्याय कोई छोटा कीड़ा वगैरह होता है तो कितनी मुश्किल से वो एकेंद्रीय पर्याय छोड़कर द्विंद्रीय में आ गया। हम अभी मनुष्य हुए है तो मनुष्य की हमारी लाइफ स्पैन कितनी है? 50-60-100 साल। अभी कौन 100 साल जीता है? हाँ, और उसकी भी क्या हालत होती है वो पता है अभी? हाँ, किसी दूसरे के आधार से फिर रखड़ना पड़े। तो उस इतने से जीवन के लिए हमने क्या क्या नहीं किया? पहले पढ़ाई की, 20-25 साल तो उसमें बिताए, इतनी पढ़ाई की तो अभी फिर कमाई तो करनी चाहिए। फिर कमाई करने से क्या वो भोगेंगे तो सही ना? क्या बच्चों का इसे देखे चले जाएंगे? हम खुद भोगेंगे तो भोगने के पीछे चले जाएंगे हम तो जिंदगी समाप्त हो, अभी सामने मरण दिखने लगा तो अभी कुछ करेंगे तो क्या करना चाह? दया दान किया, यात्रा की, सच्चा धर्म तो हाथ में नहीं है। ऐसे एक दो बार नहीं, अनंतों बार मनुष्य हो चुके हम, और इस मनुष्य भाव में भी यही करते रहे तो फिर घूमना तो है ही ना। आप लगते हैं ना, आपको कहेंगे बहुत थोड़े लोग सुनने को आते हैं, सबके नसीब में मोक्ष जैसा सर्वोत्कृष्ट फल सबको थोड़े मिलेगा, जो उसके लिए प्रयत्नशील होगी उसको मिलेगा। यानी जो प्रयत्न करे और उसको फल नहीं मिले ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। सच्चा प्रयत्न चाहिए, ऐसे उल्टा मन से जो समझ में आता है वैसा करे तो उससे कुछ नहीं होगा। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं, जो कोई बिल्कुल अज्ञानी अजान है और कुछ जल जाता है कुछ करता है तो मन में आए वो लगा लेता है, कोई स्याही लगाएगा, कोई गोबर लगाएगा, कुछ भी लगाएगा तो हमें उसकी करुणा आती है ना, अरे क्या मूर्ख है ये, ऐसी कुछ होता है क्या? उल्टा उसको तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही धर्म के बारे में कुछ सोचे बिना ही, कुछ सुना हुआ है जो लोग करते तो इसलिए ऐसे हम भी करते रहते, क्यों नहीं था? हमारे भगवान तो बहुत हमको डर लगता है, ये दूसरे अन्य मति के अच्छा लगता है, इजी लगता है, प्रसन्न भी होते हैं, फल भी देते हैं, वो हमारे मित्र जैसे लगते हैं, तो हमको उनको लाते हैं, स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, है ना? देखो ये भव्यत्व और अभव्यत्व जीव के अपने स्वभाव भाव है, उसमें भव्य से बदलकर अभव्य हो जाए, अभव्य से बदलकर भव्य ऐसा नहीं है। एक बात आगे पढ़ेंगे, ये पारिणामिक के 3 भेद देखे हमने, औदयिक भाव के 21 भेद है। ये जो 21 भेद है ना उसको मैं पहले आपको 8 में बताऊंगी, फिर उसके हम याद में रखना आसान हो जाएगा। पहले गति, तो गति है कितनी है? 4 है, तो फिर हम 4 गति के पहले मूल में 8 हम भाव देखेंगे। एक तो है गति, दूसरा है कषाय, तीसरा है वेद, फिर है लेशा, और फिर 4 जो है वो एक एक है सिंगल सिंगल। कौन से? मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असीतत्व।
ज्ञान दर्शन चारित्र का उल्टा,
दर्शन ज्ञान चारित्र का उल्टा, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असीतत्व। जब तक 8 कर्म तब तक असीतत्व। देखो अभी हम पढ़ी देते, हमने क्या क्या देखा था? पहले 4 कौन से देखे? गति, कषाय, वेद और लेशा। गति 4 है, कषाय भी क्रोध मान माया लोभ 4 है, 3 वेद यानी कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, ये 3 वेद हुए। 6 लेशा, सुशीला बेन बताएंगे, कृष्ण, नील, कपोर, पीत, पद्म और शुक्र। आपने शायद वो किसी मंदिर में वो लेशा का वो झाड़ देखा होगा, 6 पुरुष है अलग अलग फल खाना चाहते हैं। कोई ऐसा है कि आम का वृक्ष है, जंगल में से जा रहे थे, पूरा वृक्ष नीचे से उखाड़ कर निकालना चाहते जड़ से, और फिर वो आम खाएगा उसको, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसके भाव कैसे वो बताते हैं। तो उसको दृष्टांत देके समझाइए कैसा है, तो कृष्ण लेशा वाला। दूसरा कौन सा है? नील लेशा वाला, तो ऊपर बड़े ट्रंक ऐसा वहां से काट करके फल खाना चाहता। फिर तीसरा कौन सा है? कपूत वाला, तो छोटी छोटी डालियां काट करके फल खाना चाहिए। फिर पीत रेशा वाला वो तो आम डायरेक्ट नहीं, वो जो डाली डाली। और पद्म वाला है वो मात्र आम निकाल के खाता है, और शुक्ल रेशा नीचे गिरे हुए आम खाते हैं। इनकी प्रवृत्तियों में ये तो बिल्कुल स्थूल उसका उदाहरण है, दृष्टांत है, परंतु आपने शायद पुराने जमाने के किसी मंदिरों में देखा होगा। अभी भी कितने ही मंदिरों में ऐसे चित्र बने हैं, हमें मालूम ही नहीं दीवार में कुछ तो है, ऐसा करके हम चले जाते हैं। तो ये है लेशा। ये छह के नाम बताएंगे नितिन भाई, फिर कपूर। बहुत अच्छा। ये रंग के नाम देके, वर्ण के नाम देकर उनके भावों को बताना चाहिए। नहीं कैसे काला परिणाम वाला ऐसा कहते कि नहीं, तो ऐसे एक कृष्ण रेशा वाला, नील रेशा वाला, कपोत रेशा वाला, वर्णों के नाम देके उनको भावों की पहचान। आगे तो उसके बहुत विस्तार से वर्णन है इन भावों का, पूरी पुस्तक में पांच भावों का ही वर्णन है। मौन है ना वहां पर कषाय, लेशा किसको कहते हैं, कषाय और योग मिलकर लेशा है। तो यहाँ कषाय में तो चारित्र मौन तो है ही है, और योग में योग किस कर्म के उदय में होता है, हाँ शरीर नाम कर रहे। तो ये पहले गति चार, कषाय चार, वेद तीन और लेशा छह, कितने हुए 17 हुए ना। अब बाकी जो चार है वो सिंगल सिंगल है, एक है मिथ्यात्व, अज्ञान। ये देखो उदय की जब अज्ञान कहते हैं इसका अर्थ क्या है, यानी यहाँ वो मिथ्या वाला नहीं लेना, ज्ञान नहीं होना, किसी चीज का ज्ञान नहीं होना वो उदय का ज्ञान। असंयम और असिद्ध, ये 21 भेद हुए। 21 नाम बताएंगे सुशील अगर ना बोले। बहुत अच्छा। और कौन बताना चाहते, प्रेरणा बेन। हाँ
चार भक्ति, चार कषाय, तीन वेद, छह लेशिया, मिथ्यात्व, ज्ञान, असंयम और असिद्ध।
बहुत अच्छा। और कौन, नलिन भाई। हाँ बोले।
चार भक्ति, चार कषाय, तीन वेद, छह लेशिया, मिथ्यात्व, अज्ञान।
बहुत अच्छा। ये 21 हुए औगोदयिक भाव। अब आगे पढ़ते हैं, क्षौपशमिक भाव के 18 भेद हैं। पहले हमने क्षौपशमिक भाव देशघाती कर्मों में होता है ऐसा देखा था, याद है ना। कर्मों के मूल दो भेद है, ये सब बताएंगे अभी, इसका विषय ये बिल्कुल बेसिक से है, यानी कुछ अभी तक मालूम नहीं उसको ये पुस्तक पढ़ने से सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो आठ जो मूल कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी और अंतराय, इनको घाती कर्म कहते हैं। आयु, नाम, गोत्र और वेदिनी, ये अघाती कर्म। अब एक शौपशमिक के 18 भेद हम यहाँ पे अभी तो केवल नाम देखने होंगे, बाद में उसके अर्थ, उसके डिटेल सब बाद में देखेंगे। तो वहां 10 उपयोग उन्होंने अच्छी तरह से उसका भेद बताया। देखो हम हमेशा कैसे याद करते थे, तीन अज्ञान यानी कुज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान जो मिथ्या दृष्टि के। सम्यक दर्शन होने पर भी मति, श्रुत, अवधि ज्ञान तो चलता ही है, वो उसको सु शब्द लगाए। तो सम्यक ज्ञान के पांच भेद, सुमति ज्ञान जिसको मति ज्ञान कहेंगे, सुश्रुत यानी श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये आठ तो ज्ञान के उपयोग हुए। ये नहीं नहीं, ये तो मैंने आठ ज्ञान के उपयोग बताए, और यहाँ क्षौपशमिक उपयोग लेना है। तो क्षौपशमिक में कितना लेना है, तीन कुज्ञान और चार सुज्ञान। आठ में से केवल ज्ञान को हम क्षायिक भाव में डालेंगे, और फिर दर्शन तीन। दर्शन के ऐसे चार भेद है, कौन से, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि दर्शन और केवल। केवल दर्शन वो क्षायिक भाव में डालेंगे, और यहाँ तीन हो गए। तो पहले ज्ञान के साथ और दर्शन के तीन, 10 उपयोग रूप भेद हो गए, इन्हें याद रखने के लिए आसान हो गया, 10 तो उपयोग हो गए। और पांच जो है वो क्षौषमिक लब्धि कहा उसको, क्योंकि अंतराय कर्म पांच प्रकार के हैं, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य को अंतराय करने वाले विघ्न करने वाले, तो उसका नाम क्या है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। और वो कैसे है, तो उनका क्षोभम भाव चलता है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो इनका क्षोभम चलता है, तो वो संबंधी पांच उसको कहेंगे क्षोभमिक लब्धि। और उसके कौन से, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। देखो ये समझाने के लिए दूसरों को दान देते उसको हम दान कहेंगे, परंतु ये जीव के गुण है, अपने को स्वभाव की प्राप्ति पर्याय में होना, और हम जो उस पर्याय का दान अपने को ही देते वो सच में दान लेना, परंतु समझाते समय हम किसी को दान देना चाहते हैं और कोई रोकता है, अरे मत देना वो कुछ, हाँ उसको अंतराय डाला, उसको हम दानांतराय कहेंगे। लाभांतराय, हमारा ही पैसा हमको मिलना था बैंक में से, पर आज स्ट्राइक हो गया, क्या कहेंगे, अंतराय कर्म का उदय, अंतराय है। वैसे अंतराय तो सबको दिखता है ना, स्वाध्याय में आना चाहते पर क्या करे, अंतराय आया, आड़ा कैसा होता है, पीला के नीला कैसा होता है, अंतराय कर्म को रंग तो होगा कि नहीं, तो इतने दिन नहीं आई तब क्या हुआ, वो अंतराय। तो वो काला पीला नीला सफेद कैसा था, वो होगा कि नहीं, उसमें रंग होगा कि नहीं, बोलो क्यों होगा, कर्म है, पुद्गल है, पुद्गल में स्पर्श रस गंध, वो हमारे ज्ञान का यानी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, हम आगम ज्ञान के द्वारा कहेंगे उसमें कौन सा रंग है क्या है। ये इसकी बात चल रही थी अपनी, दस उपयोग हुए, पांच क्षोभम, दान लाभ हुआ, भोग, ये भोग और उपभोग में क्या अंतर है, बोलो, हाँ जो एक बार भोगते हैं जिस वस्तु को वो भोग, और जिसको बार बार भोगते हैं वो उपभोग। जैसे रोटी हमने एक बार खाई, उसी रोटी को दोबारा खाएंगे क्या, दूसरी खाएंगे, दूसरी रोटी खाएंगे, वही नहीं खाएंगे, उसका तो भोग ले चुके हैं, अभी उसके फिर दोबारा उसके भोग में नहीं आएगी, परंतु वो वो हीरा माणिक जो डाल रही हो उसका क्या हो रहा है, भोग के उपभोग। और जिस थाली में खाते, रोटी तो एक बार खा ली और थाली फिर दोबारा धो के वो वापरते, तो ये इंडिया वाले तो उसका उपभोग लेते हैं और अमेरिका वाले उसका भोग लेते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल है ना, एक बार खाया तो फेंक दिया। और वीर्य, वीर्य नहीं जीव का जो बल पुरुषार्थ लगता है उसको वीर्य कहते हैं। देखो ये दस उपयोग हुए और पांच एक क्षौषमिक लब्धि कहेंगे, पंद्रह तो यहाँ हो गए, अब तीन रह गए, क्षौषमिक सम्यक्त्व, क्षौषमिक चारित्र और देश संयम, ने जो हम पांचवा गुणस्थान कहते हैं संयमा से, इसके सभी के डिटेल वर्णन भेद सब आने वाला है, अभी तो हम केवल यहाँ उसके नाम कौन कौन से उसको देख रहे हैं। वीरेश भाई आप बताएंगे अठारह भेद, शौक्षमिक भाव के अठारह भेद कह रहे, पहले दस क्या कहे थे उन्होंने, दस उपयोग लिए, उसमें तीन कुज्ञान है ना, चार सुज्ञान, हाँ तीन दर्शन, ये दस हो गए, ये अंतराय संबंधी पांच लब्धि कहेंगे, क्षोक्षम लब्धि पंद्रह हो गया, तीन आपको बताना, बोलो देश संयम, या संयमा से ये अठारह हुए, देश संयम कहो या संयमा से, जो पांचवे गुणस्थान वाले को होता है। औक्षमिक भाव के दो भेद हैं, औक्षमिक के दो ही भेद होते हैं, ये उदय कुछ काल के रुक गया, ऐसा कहाँ कहाँ हो सकता है, औक्षमिक सम्यक्त्व और औक्षमिक चारित्र। अभी वो कौन से गुणस्थान वाले को होता है, क्या स्वरूप है उसका, वो क्रम से अभी तो हम केवल उनके नामों की यहाँ परिचय कर रहे हैं, उसका स्वभाव पूरा ही उसका डिटेल विशेष वर्णन आगे आएगा। और क्षायिक भाव के नौ भेद है, क्योंकि हम गाते तो है, नव केवल लब्धि रमाधरंत, सुना है कि नहीं कभी, अरिहंत भगवान को क्या कहते हैं, नव यानी नौ केवल लब्धि यानी केवल ज्ञानियों को ये नौ भाव प्रकट होते हैं। तो कौन कौन से देखो यहाँ पर, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व यानी इनके जो प्रतिपक्षी अपोजिट कर्म है उनका पूरा क्षय हो चुका है, और क्षायिक चारित्र, और क्या है पांच क्षायिक लब्धि, कौन कौन सी, दान लाभ, अभी आगे भी दान लाभ कहा था परंतु वहां क्षौपशमिक दान, क्षौपशमिक लाभ, ऐसा क्षौपशमिक लगाया था शब्द, और यहाँ क्या लिखेंगे, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य। देखो हम ऐसा देखते हैं कि जब केवल ज्ञान हुआ, अर्यंत भगवान हुए, तेरहवा गुणस्थान वाला, तो चार घाती कर्मों का क्षय हो गया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी और अंतराय, चार कर्म नष्ट हो गए, उनका क्षय हो गया। तो ज्ञानावरण के क्षय से क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शनावरण के क्षय से क्षायिक दर्शन, मोनी में दो भेद है, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। तो क्षायिक सम्यक्त्व, दर्शन मोनी और अंतराय दो एक साथ गए, और बाकी क्षायिक चारित्र, इसमें से दो हो गए ना, तो ये दो, एक दो तीन चार, और जो अंतराय कर्म है उसका भी क्षय हुआ, तो उसके पांच भाव हुए। ऐसे इस तरह से नौ क्षायिक भाव प्रकट हुए। सरला बेन कहेंगे क्षायिक भाव,
केवल दर्शन, केवल ज्ञान, क्षायिक
पांच, ये क्षायिक,
बहुत
अच्छा। इति विशेष भाव, पहले क्या था, इति सामान्य भाव, सामान्य भाव में उन्होंने पारिणामिक, औदयिक, क्षौपशमिक, औपशमिक और क्षायिक के भेद बताए, ये मूल भेद, उसके उत्तर भेद यानी सब रिविजन्स, तो कितने कितने बताए, पारिणामिक के तीन, उसके बाद औदयिक के 21, क्षौपशमिक के 18, औपशमिक के और क्षायिक के 53, इनके विशेष अनेक भाव है, ये डिविजन्स के और डिविजन्स करते रहो, तुम केवल ज्ञानी तो सब कुछ जान रहे, जो असंख्यात लोक प्रमाण है। ये क्या होता है असंख्यात लोक, तो देखो पूरा जो लोकाकाश है उसमें एक एक प्रदेश कितना सूक्ष्म है, ऐसे उसमें कितने प्रदेश हो गए, तो कहते हैं असंख्यात हो गए। जैसे हमारे एक कटोरी में मान लेते हैं कि 1000 चावल है, और ऐसी 1000 कटोरी लेंगे तो क्या 1000 गुना 1000 हो गए ना, तो एक लोक में असंख्यात प्रदेश है, ऐसे असंख्यात लोक लेंगे, तो लोक को हमने असंख्यात गुना किया तो उसकी क्वांटिटी नंबर बहुत बड़ी होती है, तो वहां कहते हैं कि कितने भाव है ऐसे, तो असंख्यात लोक प्रमाण भाव है, अलग अलग यानी इतने वेरिएशन है जीवों के, परिणामों के इतने वेरिएशन है। सो ये जीव के स्वीय भाव है, अपने भाव है, देखो ये विभाव भाव को भी लिया परंतु वो जीव का अपना भाव, राग द्वेष के परिणाम, अभी हमने देखा ना उदय भाव में लेशा लिए, कषाय लिए, गति, ये सब जो भाव हो रहे जीव में हो रहे हैं, जीव के अपने पर्याय में हो रहे हैं, वो जीव के अपने भाव है, उसमें से कुछ भाव तो उसका स्वभाव भाव है, जैसे ज्ञान उसका स्वभाव भाव है, राग द्वेष उसका विभाव भाव है, तो यहाँ सब भावों को पहले बताएंगे और आगे चलकर पुद्गल के भाव भी, स्पर्श रस गंध वर्ण, उसका भी वर्णन करेंगे। तो जो जिसका भाव है उसको पहचानना है बस। हमारे घर में इतने सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और उसमें किसकी कौन सी चीज किसकी हमको अपने ध्यान में होता है कि नहीं होता, ये जरूरी नहीं कि अपनी चीज अपने अलग से रखे, एक ही जगह सबकी रखी है, उसमें से अपनी चीज मालूम है कि ये मेरी है, ये पराई है, उसको ना उसने वहां से हटाना है ना कुछ करना है, तो इन भावों को हमको पहचानना है, इसमें अपने भाव कौन से है, अपने भावों में भी स्वभाव भाव कौन सा है, पर विभाव भाव कौन सा है, राग द्वेष के परिणाम भी यहाँ ही हो रहे हैं और सबका जानना भी यहाँ पर हो रहा है, तो ये जानना मेरा स्वभाव भाव है, राग द्वेष आदि मेरा विभाव भाव है। जब ये स्वभाव विभाव की भी पहचान हो जाएगी और ये जो बाकी जो चीजें वो तो पर में आ गए, वो तो पर भाव, उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण इसके भी वो सब पर भाव है, ये पर है और मैं जीव हूं और मेरे में राग द्वेष भी और ज्ञान भी है, तो ये पर जो शरीर आदि वो तो मैं हूं ही नहीं है, वो तो मेरे है ही नहीं है, ये तो मेरे है परंतु इसमें भी एक तो ज्ञान मेरा स्वभाव है और ये विभाव है, तो ये विभाव से मैं तो स्वभाव भाव वाला हूँ, पारिणामिक भाव वाला हूँ, उसका हम लक्ष्य करेंगे, यही मैं हूं ऐसा हम सोचेंगे, तो यहाँ केवल ज्ञान समय दर्शन की प्राप्ति होकर फिर केवल ज्ञान, इसकी और चर्चा हम करेंगे कल से शुरू रखेंगे।
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सना देत हूँ।